प्रेमी के बसी हो गया हो जाते हैं। तो हमको ऐसा भगवान में प्रेम करना चाहिए कि जिसके बल से, जिसके बल पर बिना बुलाए भगवान आ जाए। और आते हैं प्रेम, प्रेमी के यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ प्रेम है वहां बुलाने की क्या आवश्यकता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां भी बुलाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि प्रेम जहां है वहां तो भगवान बिना बुलाए आएंगे, और जहां प्रेम नहीं है वहां बुलाने पर भी नहीं आएंगे। तो अपने को तो देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है, कोई भी प्रकार की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं। न तो हम लोगों को जीने की इच्छा करनी चाहिए और न कोई मरने की इच्छा करनी चाहिए। जीने की इच्छा से हम एक दिन अधिक जी नहीं सकते, और मरने की इच्छा करने से हम एक दिन पहले मर नहीं सकते। तो दोनों इच्छा व्यर्थ है, तो इच्छा करनी नहीं चाहिए। जैसे एक रोगी आदमी है और पथ से रहता है, तो उसको औषध की आवश्यकता नहीं, और पथ से नहीं रहता है तो औषध की आवश्यकता है, क्योंकि यदि पथ नहीं रखता है तो कितनी औषधि खाएं वो औषधि कुछ भी काम नहीं देगी, और पथ से हैं तो पथ से आराम हो जाएगा, औषधि की कोई जरूरत नहीं। तो दोनों प्रकार से थी, पथ रखता है ना उसके लिए, और पथ नहीं रखता उसके लिए औषधि से व्यर्थ है। इसी प्रकार से थी, इच्छा करना से व्यर्थ है, कोई भी प्रकार की इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं, तो क्यों इच्छा करके अपनी इज्जत ही क्यों देवे। कोई बात की इच्छा नहीं करनी, कोई भी बात की मनुष्य इच्छा करता है और कहीं तुक भी जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वो बात होने ही वाली थी, कोई उसके इच्छा करने से नहीं हुई, और नहीं इच्छा करता तो भी वो बात होती, तो फिर हम व्यर्थ की इच्छा करें ही क्यों। तो इच्छा करना ही मूर्खता है, ये बात समझ करके अपने को कोई काम की कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए, संकल्प रहित होना चाहिए। भविष्य के लिए कोई प्रकार का मनुष्य संकल्प करता है तो उसको अवश्य जन्म लेना पड़ता है, और जिसके हृदय में कोई बात की इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, उसका फिर जन्म सुनी होता। और महात्माओं के हृदय में न कोई संकल्प होता है न कोई इच्छा होती, जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो जाए बस उसी में आनंद है, तो अपनी तरफ से इच्छा या संकल्प कुछ भी नहीं करते महात्मा जो है। इसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि जगत कर्मानंद तमाहु पंडितं बुधा। इसे सर्वे समारंभा, जिसके सब आरंभ कामना और संकल्प से रहित है, और ज्ञानाग्नि से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए, ऐसे ज्ञानी को पंडित लोग भी ज्ञानी मानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर देखिए, हमारी सारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए, जैसे सर्वे संभाव, जिसके सारे कर्म, जिसके सारे कर्म सम्यक प्रकार से होते हैं, कामना और संकल्प से रहित सारे कर्म उसके होते रहते हैं, क्योंकि और ज्ञानाग्नि करके जिनके सारे पाप दग्ध हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते, यानी पंडित भी उसको ज्ञानी कहते। तो अपने सारे कर्म वैसे ही होने चाहिए, कामना और संकल्प से रहित, अमुक काम अमुक तारीख में अवश्य करना है, ये तो संकल्प है, और उसके संकल्प के अनुसार करने की जो इच्छा होती है वो कामना है। तो ज्ञानी जो महात्मा पुरुष होते हैं उनके लिए कोई भी काम अवश्य करना है ऐसी बात नहीं, वे तो सब कर चुके, किंतु करना है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है और वो साक्षी दृष्टा होकर के देख रहा है, दृष्टा साक्षी होकर देख रहा है, ये भी एक प्रकार समझाने के लिए, उनकी तो गति निराली है। तो ये आपको बताया, एक तो आपको ये साधन बताया कि भगवान की शरण होना चाहिए, दूसरा ये साधन बताया कि भगवान में, ईश्वर में, महात्माओं में, शास्त्रों में, परलोक में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से ही मुक्ति हो जाती। तीसरा बताया कि प्रेम होना चाहिए भगवान के वंश में, केवल प्रेम से कल्याण हो जाता है, और भी साथ में हो तो अच्छी बात है, केवल प्रेम से कल्याण हो जाता है। और एक सब जो कि आपको भगवान की शरण का साधन बताया, भगवान की शरणागति। अब एक साधन आपको और बताया जाता है, वो सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों के संग से भी सब काम की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है, वो होना चाहिए एक प्रकार से थी। निष्काम भाव, जब निष्काम भाव से सब है, उस वो दामी है, उससे कल्याण होता है। कामना में लेकर के नहीं, हम कामना में लेकर के संग करें कि भी बीमार आदमी है तो एक प्रकार से उसे दवाई ले लें तो आराम हो जाएगा। ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा के नाते तो इसको हम थोड़ा आदर करते हैं, किंतु जो उसके मुंह सहकाम जो भाव है, वो दर्जा बड़ा नीचा दर्जा। हम ये श्रद्धा करी किसी महात्मा की भी, इसके मां की हमारी बीमारी मिट दे रहे, बीमारी मिट भी गई तो क्या, आज बैठ दी, दो दिन के बाद दूसरी बीमारी हो जाएगी, फिर को तीसरी बीमारी हो जाएगी। शरीर तो ये बीमारी का घर है, जब तक जीता रहेगा बीमारी होती ही रहेगी। अपने को तो ऐसी बात मांगनी चाहिए कि जन्म मरण की बीमारी मिट जावे, मन की बीमारी मिट जावे, और फिर बीमारी हो ही नहीं कभी, ये बात मांगनी। शरीर के लिए क्या बीमारी मांगी, बीमारी के लिए आराम मांगे तो क्या उसके लिए, तुम धोखे में। स्थितियों को लेकर के हम संग करते हैं, आराम को लेकर के संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है। ये संसार के जितने जो पदार्थ हैं सब नाश समान है, क्षण मंगूर है, दुख रूप है, इन्हीं के लिए एक अपने सो उनसे उनका सत्संग करें तो बहुत ही छोटी बात है। तो अपना सत्संग निष्काम भाव से हो, जब निष्काम भाव से सत्संग हुए तो शीघ्र ही अपना कल्याण हो जाता है। ये जो है ये भी कल्याण की कामना है, निष्काम नहीं है, किंतु खैर कल्याण की कामना बनाई हो तो बोले क्या कल्याण की कामना भी बाधक होती, बोले जरूर विलंब करने वाली होती है कामना मात्र। तो फिर कैसे, बोले अपना कर्तव्य समझ करके सत्पुरुषों के साथ के संग करना, प्रेम करने के समान दूसरी वस्तु है ही नहीं संसार में, इस दृष्टि से प्रेम करना चाहिए और मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति तो एक प्रकार से थी, समझो कि बिना इच्छा के बलात्कार से जबरन हो जाती, उसको मुक्ति को तुम धक्का दे में, ठुकरा दे में, तुम वो लौट कर वापिस आते, तो उसकी इच्छा हम क्या कर, इसमें तो सत्संग का मूल्य घट जाता है। इसी बात को रख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख है, धरिए तुला एक
अंग।
ताही सकल मिली जो सुखद सत्संग
क्रिया राम चंद्र
की जय। एक पल में स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो सुख है वो रखिए, और दूसरे पलडे के वहां एक पल का सत्संग का जो सुख रखिए, तो उस एक क्षण के सत्संग के समान वो दोनों मिलकर के भी नहीं होती। इसलिए सत्संग जो तो निष्काम भाव से करना चाहिए, कामना नहीं लेकर के। बोले मुक्ति की कामना लेकर करे तो क्या है, थोड़ी बार के बाद से मान लू। आप किसी एक महात्मा का संग करते हैं मुक्ति के लिए, कि इनके संग से हमारा कल्याण हो जाएगा, और फिर किसी कारण से थी आपके ये बात दिख गई क्योंकि मुक्ति जो है वो तो अपने साधन से ही होगी, इनके संग से हमारी मुक्ति हो जावे ये तो संभव नहीं। क्योंकि ऐसे जो पुरुष है वो तो कहते भी हमारी ये सामर्थ्य नहीं कि हम किसी की मुक्ति कर दें, तो ये कहते ही हैं, तो इनके संग से मुक्ति की तो कोई संभावना नहीं। तो पहले जो हमारा ये जो लोभ था इनके संग से हमारी मुक्ति हो जाएगी, उस समय में जो हमारी सरदार प्रेम था वो जब ये हमारी आशा उठ जाएगी कि इनके संग से मुक्ति संभव नहीं, तो वो सरदार वो प्रेम हमारा नहीं रहे, तो हमारे नुकसान हो गया ना। और वो सरदार वो प्रेम हमारा यदि कायम रहे तो कब रहे, कि वो मुक्ति जो है, मुक्ति और मुक्ति ये दोनों एक प्रकार से की जो इच्छा है सो कह के पिशाचिन है, इनकी दोनों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महात्मा लोग जो प्रेम करते हैं, वास्तव में जो महात्मा है वे जो प्रेम करते हैं, तो वे क्या मुक्ति के लिए करते हैं कि भोगों के लिए? बोले न तो भोगों के लिए करते हैं न मुक्ति के लिए करते, तो उनका भी तो कोई लक्ष्य है ना। तो ऐसा ही लक्ष्य हम रखें, क्यों? महात्माओं का लक्ष्य तो ऊंचा ही होता है। बोले उनका जो प्रेम तो निष्काम ही है, तो जब निष्काम का दर्जा ऊंचा है, निष्काम उनका प्रेम है, तो हम निष्काम ही करें। तो मुक्ति की इच्छा नहीं रखने पर भी बलात्कार से मुक्ति हो जाती है, ये जो एक प्रकार की मान्यता है वो भी सूक्ष्म मुक्ति की कामना है। कि हम मुक्ति की इच्छा नहीं भी रखेंगे तो हमारी मुक्ति तो निश्चय हो ही जाएगी, वो तो रिजर्व है, चाहे हम कामना नहीं करें। जो होने वाली बात होगी, भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति होगी, जल पीने से पिपासा की निवृत्ति होगी, ऐसे सत्संग करने से मुक्ति होगी, वो तो होगी, हम इच्छा करें चाहे न करें। बोले ये जो धारणा है, ये जो मानता है, ये इसके पेट में भी इच्छा है। बोलो महात्मा पुरुष जिस प्रकार से जिस उद्देश्य करते हैं, उस उद्देश्य से हमको सब प्रेम करना चाहिए। महात्मा लोगों का लक्षण, भगवान के भक्तों का लक्षण देखो, अध्यक्ष भूतानांग मैत्री करुण से सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित होते हैं, और सब में ममता रहित, अहंकार रहित, प्रेम करते हैं, सब पर दया करते हैं और क्षमावान होते हैं, सुख दुख में सम होते हैं। तो ये जिनके विशेष ने बताए, वहां तो समझो कि स्वार्थ की तो गंदी नहीं है और दया प्रेम है। तो जिस प्रकार से वह दया और प्रेम करते हैं, इस प्रकार से हम भी करते हैं, कर सकते, हमको भी करना चाहिए। अब भगवान की तरफ ख्याल करो, भगवान सबके सुरित है ना। सुरित का मतलब क्या? कि बिना कार्य दया करना और प्रेम करना, तो ये बात भगवान में देखने में आती है, बोले आती है। तो भगवान का जो लक्ष्य है वो ऊंचा कि हमारा, बोले भगवान का, तो फिर भगवान के लक्ष्य के अनुसार ही हमको भाव अपना बनाना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ करके सब करना चाहिए, और कोई कामना को लेकर के नहीं, मुक्ति की भी कामना को लेकर के नहीं, तो ये उच्च कोटि का दर्जा है। इस प्रकार से हमको प्रेम करना चाहिए, सत्संग हमको निष्काम भाव से सत्संग करनी चाहिए। यदि निष्काम भाव से हम सत्संग करें तो परमात्मा की प्राप्ति तो बलात्कार से आएगी, न चाहने पर उसका ठुकराने पर भी एक प्रकार से मुक्ति होगी। तो हमारे को इच्छा नहीं करें और परमात्मा की प्राप्ति के उपाय और भक्ति उपाय, गीता का जो स्वाध्याय है इससे भी आत्मा कल्याण हो जाता है। गीता के स्वाध्याय माने गीता के जो श्लोक है उनके अर्थ और भाव को समझ करके और उसको हम धारण करें अपने हृदय के बीच के मन, तो भगवान कहते हैं कि उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूं, और जितने प्रकार के यज्ञ उसमें सबसे बढ़कर ज्ञान यज्ञ। तो फिर क्या, तो भगवान खुद कहते हैं गीता की सारी जाके सत्र के श्लोक में, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करता है उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूं, वो ज्ञान यज्ञ तो कर रहा है। तो स्वाध्याय बहुत उच्च कोटि की चीज है। स्वाध्याय सिद्धि हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी कामना न करके कि अपना कर्तव्य कर समझ करके स्वाध्याय करना। गीता के जो श्लोक और भाव है इनमें हमारा समय बीते तो कितनी हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे लिए कितनी समझो की उत्तम बात है। इससे बड़े तो है क्या, और करेंगे क्या, क्या दिन के बीच के वहां बैठे पत्थर फोड़ेंगे या किसी की निंदा करेंगे। ये तो सबसे बढ़कर उस कोटि का भाव है कि हमारा समय समझो की स्वाध्याय के वहां जाना, और वो हमारा स्वाध्याय समझो की भगवत अर्थ हुए, भगवत प्राप्ति अर्थ हुए और भी उत्तम है, और वो हमारा स्वाध्याय माने निष्काम भावते हुए तो वो भी उत्तम। कोई भी कामना नहीं करे, मुक्ति की भी कामना नहीं करे, परमात्मा की प्राप्ति भी की भी कामना नहीं करे, तो इस प्रकार का जो निष्काम भाव होता है वहां भगवान बिना बुलावे आते ही भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान प्रेमी ठहरे ना, जहां अधिक प्रेम होता है वो ज्यादा व्याकुल होता है, वो ज्यादा समय तक बिना मिले रह नहीं सकता, और जिसका थोड़ा प्रेम होता है वो तो एक प्रकार से न मिलने पर भी कोई बात नहीं है, क्यों थोड़ा प्रेम है, और अधिक प्रेम होता है वो तो व्याकुल हो जाता है प्रेम के लिए, वो बिना मिले रह नहीं सकता, तो फिर हम बुलावे क्यों। जो आदमी इस रहस्य को समझता है कि भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ता है जहां प्रेम होता है, तो हमारे में जब प्रेम नहीं है तो भगवान बुलाने पर भी नहीं आवेंगे, और जब हमारे में प्रेम हो जाएगा तो भगवान बिना बुलावे आवेंगे, तो बुलाना तो व्यर्थ ही है। तो ये सोच करके हम कड़ा होकर के रहें और ये धारणा हृदय में रख करके रहें कि एक प्रकार से उसको अवश्य आना पड़ेगा, उसको निश्चय आना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं अपने को बुलाने की। वो जब एक प्रकार से उचित समय जब उसे नहीं रहा जाता तब आप, और जब तक रहा जा सके रहे अपने को क्या, वो भी रहता है तो हम भी रहेंगे। तो ये एकदम निष्काम प्रेम भाव, ये भाव था प्रहलाद। प्रहलाद ने कभी अपने दर्शन के लिए पुकारा नहीं, बुलाया नहीं, पर हमको क्या जरूरत बुला नहीं, उसकी मर्जी होता हो ना मर्जी हो तो ना उसकी इच्छा होता हो, अपनी तो इच्छा है नहीं एक प्रकार से, न बुलाने की इच्छा है न कोई निषेध, आवे तो निषेध भी नहीं है न तो कोई अपनी तरफ से बुलाओ भी नहीं। ऐसा धारणा करके देखे तो प्रेमी को आना ही पड़ेगा, हम संसार में देखते हैं कि प्रेमी को बुलाना नहीं पड़ता, जहां बुलाव है वहां प्रेम कम है। तो इस प्रकार से ये आपको साधन बताया, तो ऐसे ऐसे बहुत से साधन हैं, तो आपको एक घंटा के बीच के वहां ये इतने साधन बताए। 4 बजे करीब हम आए थे, अब 5 बजे हम आए, तो फिर आपको दुलारे नीचे आपको इतने साधन बताए। एक तो शरणागति का, और दूसरा सो श्रद्धा, तीसरा सो प्रेम, चौथा शरणागति, स्वाध्याय, निष्काम तो सबके साथ, निष्काम तो सबके साथ नहीं है वो तो, निष्काम तो भाव है, निष्काम भाव से सत्संग करना चाहिए, निष्काम भाव से स्वाध्याय करना चाहिए, और निष्काम भाव से भगवान में प्रेम करना चाहिए, और निष्काम श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, और निष्काम भाव से भगवान की शरण होना, खास 5 उपाय निष्काम भाव से होने के
पास।
मैं बताऊ शरणागति और श्रद्धा और प्रेम और सत्संग और स्वाध्याय, इसका ये कारण है कि कुछ और कहो जो सबसे बढ़कर के साधन है और सब साधनों का फल है, वो है परमात्मा का ध्यान। हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए हमारे को, और चाहे कुछ भी न हो, चाहे जब भी मत हो, चाहे सत्संग भी मत हो और चाहे कुछ भी मत हो, परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके वहां प्रसन्नता शांति आनंद प्रत्यक्ष है, किंतु प्रत्यक्ष जो शांति प्रसन्नता आनंद है उसके लिए हमको ध्यान नहीं करना। और ध्यान का फल क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान नहीं करना। तो बस ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए ध्यान करना। कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है, मुक्ति की भी कामना अपने को नहीं रखनी। तो बोले ठीक है, किंतु साथ के बीच के वहां नाम का जप रहे तो उसमें मदद ही मिलेगी ध्यान में। तो बोले उसमें कोई हमारा आपत्ति क्या कि जप भी करें ध्यान भी करें, साथ के वहां जप उस ध्यान में सहायक है, इसलिए हमारे जप करने में कोई विरोध नहीं। तो जप करते हैं ध्यान के लिए, जब से ध्यान के वहां मदद मिलती है। और बोले ध्यान सत्संग से भी ध्यान जमता है, बोले सत्संग से यदि ध्यान जमता है तो सत्संग भी साथ में रहे, हमारा कोई सत्संग से विरोध नहीं है, किंतु हमारा तो मतलब है कि ध्यान हमारा तो लेना चाहिए, और ध्यान के बीच के वहां जो मदद कारक है उसका आदर करते हूं, उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई निषेध नहीं, किंतु हम हमारा लक्ष्य यह है कि केवल हमारा ध्यान होना चाहिए, और वो ध्यान एकदम निष्काम भाव से होना चाहिए, और वो ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। ध्यान है आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना, कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर बुद्धि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान या तद्वृत्ति, तो सूक्ष्म वृत्तियां है कलेशों की, वो ध्यान करके है, ध्यान करके त्याग, माने ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती है। तो ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं, सभी साथ साथ, और गीता का तो विशेष लक्ष्य है। गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं कि जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, स्मरण के ऊपर है। स्मरण की जो आगे की अवस्था है वो चिंतन है, और चिंतन की और अवस्था जब बढ़ जाती है तो वो चिंतन ही ध्यान बन जाता है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम स्मरण है, और उसका जो एक प्रकार से मन से थी स्वरूप पकड़ा रहता है, उसकी आकृति भूलते नहीं है, वो होता है चिंतन। और वो ऐसा हो जाता है कि अपने आपका बार का और का ज्ञान ही नहीं रहे, एक कांता ध्यानम, एक तार समझे कि उससे का ध्यान निरंतर बना रहे, वो ऐसा ध्यान का स्वरूप है। तो परमात्मा का जो ध्यान है वो तो बहुत ही उत्तम है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान से शास्त्र में बतलाई है, किंतु अपने को तो परमात्मा का ध्यान इसलिए करना है कि ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। जितने जो साधन है वो ध्यान के लिए है, और ध्यान है तो परमात्मा के लिए है, किंतु हम एक प्रकार से ध्यान तो करें और परमात्मा को नहीं बुलावें तो परमात्मा समझो कि अपने आप ही वहां आते हैं। तीक्ष्ण जो है जो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है तो उसका ध्यान अपने आप ही हो गया, और ऐसा ध्यान लग गया कि फिर भगवान अगर उसका ध्यान टूटाना चाहते तो भी नहीं टूटता है। तो भगवान कितने खुश हो गए उसके ध्यान को देख करके, उसके ध्यान को देख करके भगवान ऐसे मुग्ध हो गए। बोला यदि ध्यान न हो तो, ध्यान न हो तो भगवान के केवल नाम का जप ही करना थी, भगवान के नाम के जप से भगवान के भजन से भी तुम जो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है, और भगवान के मां प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम के जप से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाम के जप से सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम के जप से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम के जप से भगवान उसके वश में हो जाते हैं। नाम के जप से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो सारी बात नाम के जप से हो जाती है। तो इसलिए समझो कि यदि ध्यान न लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप ही करना चाहिए। सुमरी नाम है रूप बीनु देखे, हो तेरी रे स्नेह विशेखे, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए ध्यान के बिना, तो भगवान के वहां विशेष प्रेम हो जाता है और प्रेम होने से भगवान मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समानम्, प्रेमते प्रगत हो ही मैं जाना, हरि शब्द में संभाव से विराजमान है और प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं इस बात को मैं जानता हूँ। नारायण 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 सेवन नारायण नारायण सेवन नारायण 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 सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी
शरणागति श्रद्धा प्रेम सत्संग स्वाध्याय ध्यान नाम जप इन सातों को निष्काम भाव से करने के विषय में उस श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी बार सोमवार को सदन गीता भवन के हॉल में शाम को 5 बजे करीब दिया गया।